जो अगला पाठ है यह आद्य इतिहास धातुकाल का प्रारंभ है। इसमें जो हम सुनेंगे इसमें पाषाण युग की समाप्ति के बाद का युग है जिसे आद्य इतिहास कहा जाता है और इसे धातुकाल का प्रारंभ भी माना जाता है। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के प्रयोग का युग प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसा तथा अंततः लोहा प्रयोग में लाया गया, किंतु पाषाण उपकरणों का प्रयोग पूर्णतया बंद नहीं हुआ तथा लंबे समय तक मनुष्य ने तांबे तथा पत्थर के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग किया। भारत के विभिन्न भागों में कई ऐसी संस्कृतियां प्रकाश में आई हैं जिनमें पत्थर तथा तांबे का उपयोग साथ साथ दिखाई देता है। इन्हें ताम्रपाषाणिक अथवा चालकोलिथिक कहा गया है। इनकी कालावधि अत्यंत विस्तृत है। ये प्राक हड़प्पा, हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा काल तक फैली हुई हैं। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता के पूर्व दक्षिणी अफगानिस्तान के मुंडीगाक तथा देह मुरासी गुंडई, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, नाल, स्याहदम्ब, सादात, किले गुल मोहम्मद, पेरियानो गुंडई, कुल्ली में ही सिंध, सिंध में कोटदीजी, आमरी, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में सराय खोला, जलीलपुर, राजस्थान में कालीबंगन तथा हरियाणा के बनावली आदि पुरावस्थलों के उत्खनन से ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बलूचिस्तान तथा सिंध क्षेत्र में इन संस्कृतियों के लोग पांडु अथवा बफ तथा लाल रंग के मृदभांड बफ एंड रेड वेयर्स का प्रयोग में लाते थे। लाल रंग के भांडों का संबंध दक्षिणी क्षेत्र से माना गया है। पहली संस्कृति को जोब नाम दिया गया है तथा दूसरी अर्थात पांडुवर्णी संस्कृति का विभाजन क्वेटा कुल्ली तथा आमरीनाल संस्कृतियों के रूप में किया गया है, किंतु कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि लाल भांडों वाले क्षेत्र में पांडु भांड तथा पांडु भांड वाले क्षेत्र में लाल रंग के भांड भी मिलते हैं। इन संस्कृतियों को प्राक संधव, प्राक हड़प्पा अथवा प्रारंभिक हड़प्पा भी कहा जाता है। प्राक संधव संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। पाषाण फलकों की अधिकता है। तांबे के उपकरणों में कुल्हाड़ियाँ, चाकू, चूड़ियाँ, मुद्रिकाएँ, कंकड़ मिलते हैं। बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए मनके मिलते हैं। विविध प्रकार के हाथ एवं चाक पर बनाए गए मृदभांड मिलते हैं। ये मुख्यतः लाल और पांडु जो हल्के गुलाबी रंग के हैं। कुछ बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारियाँ मिलती हैं। इस संस्कृति के लोग कृषक और पशुचारी थे। वे गेहूँ, जौ, धान, मसूर, उड़द, मटर आदि की खेती करते थे तथा गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि का पालन एवं चारण करते थे। उनके मकान मिट्टी तथा घास फूस के बनते थे। कहीं कहीं कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कुछ स्थलों कोटदीजी, कालीबंगन आदि में अनगढ़ पत्थरों के प्रयोग का तथा किलेबंदी के भी साक्ष्य मिलते हैं। कुल्ली, जोब आदि से प्राप्त नारी मूर्तियाँ मातृदेवी की पूजा का संकेत देती हैं। शवाधान में दाह कर्म एवं समाधिकरण दोनों विधियाँ अपनाई जाती थी। अस्थि कलशों में औजार, उपकरण, आभूषण आदि मिलते हैं। इससे किसी प्रकार के लोकोत्तर जीवन में विश्वास की झलक मिलती है। सिंध, पंजाब, राजस्थान आदि की ग्रामीण संस्कृतियाँ अत्यंत विकसित थी। कोटदीजी संस्कृति के संबंध में यह दिखाई देता है कि यहाँ सुनियोजित भवन, सुदृढ़ सुरक्षा दीवार तथा नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। समृद्ध ग्रामीण आधार पर ही कालांतर में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। कांस्य काल, हड़प्पा एवं सिंधु घाटी की सभ्यता। 20वीं सदी के द्वितीय शतक तक पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण, जो ईसा पूर्व 326 है, के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। परंतु इस सदी के तृतीय शतक में इस भ्रामक धारणा का निराकरण हुआ, जबकि दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा, जो पंजाब के मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है, तथा मोहनजोदड़ो, जो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि परस्पर 640 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए ये दोनों ही नगर कभी एक ही सभ्यता के दो केंद्र थे। पिगट महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। साहनी तथा बनर्जी के पश्चात सरजान मार्शल तथा माधव स्वरूप वत्स ने क्रमशः मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में कई वर्षों तक उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के अंदचित अनेस्ट मैके, आर्लस्टाइन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि चूंकि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी के बाहर बहुत बड़े क्षेत्र में था, अतः इसका नामकरण सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस सभ्यता के प्रकाश में आने से भारतीय इतिहास की प्राचीनता बढ़ जाती है, और अब इस विश्वास के लिए कारण है कि भारत देश भी मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के साथ ही अपनी एक स्वतंत्र सभ्यता का विकास कर रहा था, जो उनकी समकालीन होते हुए भी अनेक अर्थों में उनसे बढ़कर थी। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट होती है। यह केवल सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं थी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सिंधु सभ्यता के कई पुरास्थलों की खोज की गई है। दक्षिणी बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर, सुतका को तथा बालाकोट प्रसिद्ध पुरास्थल हैं। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो तथा चांदूदड़ो के अतिरिक्त कोटदेजी, आमरी तथा जुडीरी दड़ो के पुरास्थल हैं। इसी प्रकार पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, सरायखोला, जलीपुर के पुरास्थलों से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश प्रांतों से पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के बहुसंख्यक स्थलों को खोज निकाला है। पंजाब में रोपड़, कोटला, निहंग तथा संगोल, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी तथा मिताथल, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में रंगपुर, लोथल, देसलपुर तथा भोगत्रार, रोजदी, सुरकोटा, मालवण, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित दायमाबाद, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो मेरठ में है, बड़ा गांव और हुलास जो सहारनपुर में है, आदि से सिंधु सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। जो हाल ही में चेन्नई के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान जो NIOT है के समुद्र वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट से 30 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में समुद्री जल प्रदूषण के स्तर की जांच के दौरान समुद्र में 40 मीटर नीचे दबे हुए एक विशाल नगर सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं। इस नगर तथा सिंधु सभ्यता के स्थलों में अद्भुत समानता है। इसके अवशेष 9 किलोमीटर के दायरे में फैले पाए गए हैं। एक जलगुंड से उतरती हुई सीढ़ियाँ, 245 मीटर आकार का आयताकार चबूतरा, मिट्टी की मोटी दीवारों से बना 183 मीटर लंबा अन्नागार आदि सिंधु अवशेषों जैसे हैं। विशाल ढांचों से कुछ दूरी पर आयताकार ढांचे हैं जो मकानों के अवशेष प्रतीत होते हैं। इनमें नालियां तथा मिट्टी की सड़कें भी बनी हुई हैं। शिल्प आकृतियों में पत्थर के तराशे औजार, गहने तथा आकृतियाँ, टूटे फूटे मृदभांड, जवाहरात, हाथी दांत और मनुष्य के जपड़े तथा दंत पुरावशेष सम्मिलित हैं। यहाँ से प्राप्त लकड़ी के एक कुंदे का परीक्षण बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ तथा नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया तथा इसकी तिथि क्रमशः ईसा पूर्व 5500 तथा 7500 निर्धारित किया। इस क्रांतिकारी खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्राचीनतम नगर सभ्यता भारतीय भूभाग में ही फली फूली तथा सभ्यता के प्राचीनतम ज्ञात निशान 2000 वर्ष पीछे जा सकते हैं। यदि खंभात से प्राप्त पुरावशेषों की जांच गहनता से की जाए तो यह एक रोमांचक खोज बन जाएगी। इस सभ्यता की उत्तरी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित रहमान ढेरी तथा दक्षिणी सीमा गुजरात प्रांत में स्थित भोगत्रार हैं। ये दोनों स्थल एक दूसरे से 1400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसी प्रकार इसके सबसे पूर्व में स्थित आलमगीरपुर मेरठ में सबसे पश्चिम में स्थित सुतका गंडोर नामक पुरास्थल की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। आज तक इस सभ्यता के लगभग 2000 से 2500 तक स्थलों की खोज की जा चुकी है। ये बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा गंगा यमुना के दोआब, जम्मू, गुजरात, उत्तरी अफगानिस्तान आदि में फैले हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र तथा मेसोपोटामिया की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के समान विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में केवल समता है, वरन एक रूपता भी है। ये सभी नगरीय एवं कांस्य युगीन सभ्यता का बोध कराते हैं। नगर योजना, मृदभांड कला, भार और माप की प्रणाली तथा अन्य अनेक बातों में अद्भुत समानता दृष्टिगोचर होती है। उत्पत्ति। आश्चर्य एवं खेत का विषय है कि इतनी विस्तृत सभ्यता होने के बावजूद भी इस सभ्यता के उद्भव और विकास के संबंध में विद्वानों में भारी मतभेद है। अभी तक की खोजों ने से इस प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं पड़ सका है, कारण कि इस सभ्यता के अवशेष जहाँ कहीं भी मिले हैं अपने पूर्ण विकसित अवस्था में ही मिले हैं। सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, सर मार्टिमर व्हीलर आदि पुराविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई। इन विद्वानों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता सिंधु सभ्यता से प्राचीनतर थी। इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समान विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो आगे सुनेंगे। जो पहली विशेषता थी, दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं, अर्बन हैं। जो दूसरी है विशेषता, दोनों के निवासी कांसे तथा तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। और अगली बात है, दोनों के भवन कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा दोनों को लिपि का ज्ञान था। उपर्युक्त समानताओं के आधार पर व्हीलर ने सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश कॉलोनी बताया है, किंतु गहराई से विचार करने पर यह मत तर्क संगत नहीं प्रतीत होता, कारण कि दोनों सभ्यताओं में इन बाह्य समानताओं के होते हुए भी कुछ मौलिक विषमताएं भी हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। सैंधव सभ्यता की नगर योजना सुमेरियन सभ्यता की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित है। दोनों के बर्तन, उपकरण, मूर्तियां, मोहरे आदि आकार प्रकार में काफ़ी भिन्न हैं। यह सही है कि दोनों ही सभ्यताओं में लिपि का प्रचलन था, किंतु दोनों ही लिपियाँ परस्पर भिन्न हैं। जहाँ सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर हैं, वहाँ सैंधव लिपि में केवल 400 अक्षर मिलते हैं। इन विभिन्न असमानताओं के कारण दोनों सभ्यताओं को समान मानना समीचीन नहीं होगा। पुनश्च यह मत उस समय प्रतिपादित किया गया जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राक हड़प्पाई सांस्कृतिक परिवेश का हमें ज्ञान नहीं था, किंतु अभी क्षेत्र में प्राक हड़प्पाई पुरास्थलों के प्रचुर सामग्रियों के मिल जाने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता की जड़ें भारत भूमि में ही जमी थीं और इसके लिए किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी। यह पूर्वगामी संस्कृतियों के क्रमिक विकास का परिणाम है जिसके तार मेहरगढ़ के नवपाषाणिक स्थल से जुड़े हैं। अतः हम सैंधव सभ्यता को सुमेरियन उपनिवेशीकरण का परिणाम नहीं कह सकते हैं। राव के अनुसार सिंधु सभ्यता के विकास का श्रेय उसी संस्कृति को दिया जा सकता है जो कालक्रम की दृष्टि से उससे प्राचीन हो तथा उसके साथ साथ विद्यमान रही हों, जिसमें परिवर्तन के क्रमिक चरण स्पष्ट हों तथा वे तत्व हों जो सैंधव सभ्यता को विशिष्टता प्रदान करते हैं। प्रोफेसर टीएन रामचंद्रन, केएन शास्त्री, पुसालकर, एसआर राव आदि विद्वान वैदिक कार्यों को ही इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं, परंतु अनेक विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके अनुसार दोनों ही सभ्यताओं के रीति रिवाजों, धार्मिक तथा आर्थिक परंपराओं में पर्याप्त विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। सैंधव तथा वैदिक सभ्यताओं के मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। जो वैदिक अर्थ थी, इनकी सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि सैंधव सभ्यता नगरी तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान थी। आर्यों के मकान घास फूस तथा बांस की सहायता से बनते थे, किंतु सैंधव लोग इसके लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। जो सैंधव सभ्यता के निर्माता थे वो पाषाण तथा कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे। इसके विपरीत वैदिक कार्यों को लोहे का ज्ञान था। वैदिक कार्य इंद्र, वरुण आदि देवताओं के उपासक थे, वे यज्ञ करते थे तथा लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, परंतु सैंधव लोग मुख्य रूप से माता देवी एवं शिव के पूजक थे, लिंगों की पूजा करते थे तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। आर्यों का प्रिय पशु अश्व था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे, किंतु सैंधव लोग अश्व से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग व्याघ्र तथा हाथी से भी परिचित थे क्योंकि उनकी मुद्राओं पर इन पशुओं का अंकन हुआ है। इसके विपरीत वैदिक कार्यों को इसका ज्ञान ही नहीं था। आर्यों के धार्मिक जीवन में गाय की महत्ता थी, इसे अघन्या कहा गया है। इसके विपरीत सैंधव लोग वृषभ को पवित्र एवं पूज्य मानते थे। चांदव निवासियों के पास अपनी एक लिपि थी, जबकि आर्य लिपि से परिचित नहीं लगते। उनकी शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। जो उपर्युक्त बातें बताई गई हैं यह नितांत तथ्यहीन लगती हैं कि सिंधु सभ्यता नागर एवं साक्षर थी तथा वैदिक सभ्यता ग्रामीण एवं पशुचारी और निरक्षर थी। डॉक्टर जीसी पांडे ने हाल ही में प्रकाशित अपने ग्रंथ वैदिक संस्कृति में इस बात का उल्लेख किया है कि ऋक् संहिता में कम से कम 85 बार पुर का उल्लेख हुआ है, जबकि ग्राम मात्र 9 बार तथा ग्राम में 1 बार आता है। न तो हड़प्पा सभ्यता मात्र नागरिक थी, न वैदिक सभ्यता मात्र पशुपालक यायावरी। दोनों ही सभ्यताएं देश काल में विस्तार और प्राविधिक विकास की दृष्टि से समान हैं। स्थूल रूप से उनमें एक ही विशाल सभ्यता के विविध पक्ष, प्रदेश या अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। वेदों में लेखन परंपरा के अभाव का कारण यह नहीं है कि आर्य लिपि से अपरिचित थे। इतना विस्तृत गद्य, व्याकरण, मानक भाषा बिना लिपि के संभव नहीं है। वेद रचना निरक्षर समाज में नहीं हुई। लिपि के अभाव का कारण यह है कि रहस्यात्मक परम ज्ञान के लिए लेखन उपयोगी न होकर बाधक माना गया है। जहाँ तक मूर्ति पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा आदि का संबंध है, हड़प्पा सभ्यता में इसका प्रचलन भी असंदिग्ध रूप से नहीं सिद्ध किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि लोथल, कालीबंगन आदि कुछ सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मिणमुटियाँ तथा सुरकोटता से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। लोथल के घोड़े का दायां ऊपरी चौघड़ भी मिलता है, जिसके दांत बिल्कुल आधुनिक अश्व के दांत जैसे ही हैं। समुद्री यात्रा, जलयान आदि से संबंधित विवरण यह सिद्ध करते हैं कि इस सभ्यता में नगरी तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थे। वैदिक साहित्य में जो भौतिक सभ्यता मिलती है वही सिंधु में भी है। सैंधव सभ्यता की खुदाई से भिन्न भिन्न जातियों के अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं। इनमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, काकेशियन जो थे, भूमध्य सागरी, मंगोलियन तथा अल्पाइन, इन चारों जातियों के अस्थि पंजर हैं। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि सैंधव सभ्यता के निर्माता द्रविड़ भाषी लोग थे। सुनीत कुमार चटर्जी ने भाषा विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ऋग्वेद में जिन 10 दस्युओं का उल्लेख हुआ है वे द्रविड़ भाषी थे और उन्हें ही सिंधु सभ्यता के निर्माण का श्रेय दिया जाना चाहिए। किंतु यह निष्कर्ष भी संदिग्ध है। यदि द्रविड़ सैंधव सभ्यता के निर्माता होते तो इस सभ्यता का कोई अवशेष द्रविड़ क्षेत्र में अवश्य मिलता। सैंधव सभ्यता के विस्तार वाले भाग में ब्राह्मी भाषा के साक्ष्य नहीं मिलते। बलूचिस्तान की ब्राह्मी भाषा को द्रविड़ भाषा के साथ संबद्ध करने का कोई पुष्ट आधार नहीं है। स्टुअर्ट पिगट अल्चिन, स्टुअर्ट पिगट अल्चिन, फेयर सर्विस, जेफ डेल्स आदि कुछ पुराविदों का विचार है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति दक्षिणी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब जो पाकिस्तान का है और उत्तरी राजस्थान जो भारत का है के क्षेत्रों में इसके पूर्व विकसित होने वाले ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों मुंडिगाक, मोरासी घुंडई, जॉब, क्वेटा, कुल्ली, नाल, आमदी, कोटदिजी, हड़प्पा तथा कालीबंगन से हुई। इन ग्रामीण संस्कृतियों के लोग कृषि कर्म तथा पशुपालन करते थे और विविध अलंकरणों वाले मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। खुदाई से पशु तथा नारी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। अनुमान किया जा सकता है कि बलूचिस्तान के लोग मातृ देवी की पूजा तथा लिंगोपासना भी करते रहे होंगे। उल्लेखनीय है कि इन संस्कृतियों के पात्रों पर प्राप्त कुछ चित्रकारियाँ जैसे पीपल की पत्ती, हिरण, त्रिभुज आदि सैंधव पात्रों पर भी प्राप्त होती हैं। कोटदिजी, कालीबंगन, बनावली तथा हड़प्पा की खुदाइयों से प्राप्त प्राक सैंधवकालीन स्तर स्पष्टतः नगरीकरण के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नगर नियोजन, उत्तर दक्षिण दिशा में निर्मित भवन, बस्ती का ध्रुवीकरण, गढ़ी तथा निचले नगर की अवधारणा, पक्की ईंटों का प्रयोग, अन्नागारों का निर्माण आदि के साक्ष्य मिलते हैं। बनावली के अवशेषों से पौड़ हड़प्पन विकास क्रम और अधिक स्पष्ट हो जाता है। प्रारंभ से ही यहाँ के निवासी अपने मकान सीधी दिशा में बनाते थे। यहाँ की खुदाई में पत्थर का एक बटखरा भी मिलता है। अतः इतनी अधिक सामग्रियों के मिल जाने के बाद सिंधु सभ्यता के लिए किसी पाश्चात्य एशियाई प्रेरणा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, तथा यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सभ्यता की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में ही जमी थी। नगर का विकास सुदृढ़ ग्रामीण आधार के बिना संभव नहीं है, और यह आधार निश्चित रूप से सिंध, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की समृद्ध ग्रामीण संस्कृतियों ने प्रदान किया था। संभव है भविष्य की खुदाइयों में इन क्षेत्रों से और अधिक प्रमाण स्पष्ट हो जाएं। अतः इस सभ्यता इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र की पूर्ववर्ती सभ्यताओं से हुआ है। एक नवीन खोज जिसके जनक पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर मिडो हैं ने दावा किया गया है कि सिंधु सभ्यता को प्राचीनतम मानना एक भ्रांति है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सरस्वती नदी तट पर सिंधु सभ्यता के पूर्व लगभग 3300 ईसा पूर्व फली फूली तथा विकसित हुई। अब वेदों में वर्णित सरस्वती का अस्तित्व उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर प्रमाणित हो चुका है। इस नदी का बहाव उस समय हिमालय से लेकर वर्तमान हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक था। राखीगढ़ी के उत्खनन में इस धारणा को बल मिला है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख तत्व नगर तथा भवन। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ। नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यावसायिक उत्पादनों के विनिमय द्वारा उसे ग्रामों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रमुख नगर जिनकी खुदाइयाँ की गई हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगन, मणावली तथा धवलावीरा। इन्हीं के आधार पर इस सभ्यता के नगर नियोजन तथा भवन विन्यास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनमें भी क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा उल्लेखनीय है। हड़प्पा संप्रत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो उच्च कोटि के नगर निवेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका विधान दुर्ग के रूप में किया गया है, जिनमें पारिखा, प्रकार, द्वार, अट्टालक, बुर्ज, राजमार्ग, प्रसाद, कोष्ठागार, सभा, जलाशय आदि वस्तु के सभी तत्व प्राप्त होते हैं। इन नगरों की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। नगरों के दुर्ग ऊंची एवं चौड़ी प्राचीरों सुरक्षा वृत्ति से घिरे थे। प्राचीरों में बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं में द्वार, जिसे गोपुरम भी कहते हैं, बनाए गए थे। वी एस अग्रवाल ने सिंधु पुरों की पहचान ऋग्वेद में वर्णित असुरों के पुरों से स्थापित की है। इनका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर हुआ था। हड़प्पा के टीलों का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया था। तत्पश्चात जनरल कलिंगम ने 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। 1912 ईस्वी में जे एफ फ्लिट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया, किंतु कनिंगम एवं फ्लिट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, तब राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल का पुनः अन्वेषण कर 1924 से 25 के दौरान उत्खनन कार्य करवाया। साहनी के पश्चात 1926 से 27 तथा 1933-34 तक माधव स्वरूप पोत्स ने निर्देशन में हड़प्पा में खुदाइयां की गई। 1946 में सर मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य करके पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं प्राप्त की गईं। हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि यह नगर लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित था। हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे तथा अन्नागार महत्वपूर्ण हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। दुर्ग के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनी थी जो अपने आधार पर 13.5 मीटर चौड़ी थी। इसमें स्थान स्थान पर द्वार तथा उसके समीप प्रेक्षक गृह बनाए हुए थे। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं। दुर्ग के उत्तर में स्थित 6.1 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष मिले हैं। इनकी दो भिन्न पंक्तियां हैं। उत्तरी पंक्ति में 7 तथा दक्षिणी पंक्ति में 8 गृहों के अवशेष हैं। प्रत्येक का आकार 17×7.5 मीटर है। प्रत्येक गृह में कमरे तथा आंगन होते थे। इनमें मोहनजोदड़ो के गृहों की भांति कुएं नहीं मिलते। घरों के आकार प्रकार से स्पष्ट है कि ये श्रमिक वर्ग के आवास रहे होंगे। घरों के उत्तर की दिशा में 18 गोल चबूतरे बने हैं जिनके बीच में एक बड़ा छेद है जिनमें लकड़ी की ओखली लगी थी। इनमें लोग मूसलों से अनाज कूटते थे। यहाँ से जौ के दाने, जले गेहूँ तथा भूसी पाई गई है। चबूतरों के उत्तर में अन्नागारों की दो पंक्तियाँ मिली हैं। प्रत्येक में 6-6 अन्नागार हैं। प्रत्येक 15.24×6.10 मीटर के आकार का है। सभी दरवाजे उत्तर दिशा में नदी की ओर थे। इनसे जल मार्ग द्वारा विभिन्न स्थानों में आसानी से अन्न भेजा जा सकता था। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मिथकों का टीला होता है, की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने करके इसे पुरातात्विक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। 1922 से 1930 तक सर्जन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो में भी नगर के पश्चिमी भाग में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यहाँ के अवशेष हड़प्पा के अवशेषों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित दशा में हैं। इनका विवरण आगे सुनेंगे आप। जो एक वृहत स्नानागार है यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है, जो उत्तर से दक्षिण तक 180 फीट या 54.86 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक की 108 फीट या लगभग 33 मीटर है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। यह 39 फुट या 11.89 मीटर लंबा, 23 फुट 7.01 मीटर चौड़ा तथा 8 फुट 2.44 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हैं। जलाशय की फर्श पक्की ईंटों की बनी है। फर्श तथा दीवार की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। बाहरी दीवार पर बिटुमेन का 1 इंच मोटा 2.54 सेमी प्लस्तर लगाया गया है। जिप्सम तथा बिटुमेन जलाशय को सुदृढ़ बनाते हैं। विशाल स्नानागार भवन के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। जलाशय के तीर और बरामदे और उनके पीछे कई कमरे तथा गलरियां थीं। इन्हीं में से एक कमरे में ईंटों की दोहरी पंक्ति से बनाया गया कुआं था जिससे स्नानागार में पानी भरा जाता था। प्रत्येक कमरे में ईंटों की बनी सीढ़ी मिलती है जिससे अनुमान किया जाता है कि इनके ऊपर दूसरी मंजिल भी रही होगी। मैके का अनुमान है कि इसमें पुजारी रहते होंगे जो ऊपरी कक्ष में पूजा पाठ करते तथा नीचे के कमरों में स्नान करने उतरते थे। बृहत स्नानागार के उत्तर में छोटे छोटे स्नानागार बने हैं। संभवतः बृहत स्नानागार सामान्य जनता के लिए था तथा इसका उपयोग धार्मिक समारोहों के अवसर पर किया जाता था। इससे सूचित होता है कि सिंधु सभ्यता में धार्मिक कार्यों के लिए तथा शरीर संस्कार के लिए स्वच्छता का अत्यंत ऊंचा आदर्श था। मार्शल ने इन्हें तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। डीडी कौशाम्बी बृहत स्नानागार की तुलना कालांतर के संस्कृत ग्रंथों में अनेक वर्णित पुष्कर अथवा कमल ताल से करते हैं, जो धार्मिक संस्कार से संबंधित स्नान तथा शुद्धिकरण के अलावा राजाओं और पुरोहितों के अभिषेक के लिए आवश्यक माने जाते थे। इसका विवरण उन्होंने कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया पृष्ठ संख्या 68 पे किया है। अन्नागार जो दूसरा विशेषता है, स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थित एक भवन मिला है जो पूर्व से पश्चिम में 45.7272 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण में 82.8686 मीटर चौड़ा है। इसका ऊपरी ढांचा जो शायद बांस का बना है अब नष्ट हो गया है। इसे व्हीलर ने अन्यागार ग्रैनरी बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न प्रकार आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। अन्नागार में हवा जाने के लिए स्थान बनाए गए थे। उसके उत्तर की ओर एक चबूतरा है जो अन्न रखने तथा निकालने के समय उपयोग में लाया जाता होगा। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की सुविधा आदि निस्संदेह उच्च कोटि की थी। विद्वानों का विचार है कि यह राजकीय भंडारागार था जिसमें जनता के कर के रूप में वसूल किया हुआ अनाज रखा जाता था। मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में भी इस प्रकार के अन्नागार के अवशेष मिलते हैं। पुरोहित आवास। बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 × 33.77 मीटर के आकार के एक विशाल भवन के अवशेष मिलते हैं। इसमें 10 मीटर का वर्गाकार प्रांगण, 3 बरामदे तथा कई कमरे बने थे। कुछ की फर्श पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इस भवन के विशाल आकार प्रकार तथा स्नानागार से इसकी सन्निकटता को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि संभवतः यहाँ प्रधान पुरोहित अपने सहयोगियों के साथ निवास करता था। संभव है यहाँ पुरोहितों का विद्यालय कॉलेज ऑफ प्रेस्टेट्स स्थित रहा हो। सभा भवन। दुर्ग के दक्षिण की ओर 27.27 मीटर के आकार का एक वर्गाकार भवन मिलता है जिसे सभा भवन कहा गया है। इसमें ईंटों के 20 चौकोर स्तंभों के अवशेष मिले हैं। इनकी 4 कतारें हैं, प्रत्येक में 5-5 स्तंभ हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था। संभवतः इन स्तंभों पर भवन की छत टिकी हुई थी। इस प्रकार यह स्तंभों वाला भवन प्रवेश भवन था। भवन के भीतर बैठने के निमित्त चौकियां बनाई गई थीं। मायके के विचार में यहाँ कोई बाजार लगती होगी। लगता है कि इस भवन का उपयोग सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक थी। गलियां 1.80 मीटर तक चौड़ी होती थीं। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सड़कें मिट्टी की बनी थी किंतु इनकी सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। इस पर कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे खोदे जाते अथवा कूड़ा पात्र रखे जाते थे। हड़प्पा की सड़कों के किनारे इस प्रकार के गड्ढे खुदे हुए मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने हुए मिलते हैं। संभवतः इन पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं की बिक्री किया करते थे। प्रत्येक खंड में भवन बने होते थे। अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। नगर में नालियों की सुंदर व्यवस्था थी। प्रायः प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियाँ बनाई गई थीं जिनसे होकर नगर का गंदा पानी निकल जाता था। किसी किसी स्थान पर बड़ी नालियों के बीच में गड्ढे भी बना दिए जाते थे जिनमें नाली का कूड़ा करकट एकत्र होता था। बड़ी नालियों को पत्थर की पटियाओं से ढक दिया जाता था। मकान के कमरों, रसोई, स्नानगृह, शौचालय आदि सभी से निकलकर नालियों को एक बड़ी नाली में जोड़ दिया जाता था तथा फिर वह बड़ी नाली सार्वजनिक नाली में मिलती थी। स्थान स्थान पर मेन होल बने होते थे। इन्हें बड़ी बड़ी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें हटाकर नाली को साफ करते थे। नालियों की अविस्तृत व्यवस्था सैंदर सभ्यता की अद्भुत विशेषता है जो किसी अन्य समकालीन नगर में नहीं प्राप्त होती। इनकी देखरेख अवश्य ही आधुनिक युग की भांति नगर पालिकाओं द्वारा की जाती होगी। रोम निवासियों के काल तक किसी भी दूसरी सभ्यता के अंतर्गत सैंदर सभ्यता के समान नालियों का सुप्रबंध देखने को नहीं मिलता है। 18वीं शती के पूर्व लंदन तथा पेरिस जैसे नगरों में सफाई की इतनी उत्तम व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। मकान, नालियां तथा स्नानगृह अच्छी तरह पकाई गई ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43 सेमी तथा 26.27 सेमी / 6.35 सेमी के आकार की है। सामान्यतः 27.94 सेमी / 13.97 सेमी / 6.37 3-5 सेमी जो अनुपात है यह 4:2:1 है के आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सबसे छोटी ईंट का आकार 24.13 × 11.05 × 5.08 सेमी का है। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्री सभ्यता में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है तथा मेसोपोटामिया में भी इनका सीमित मात्रा में ही प्रयोग मिलता है। सिंधु सभ्यता के भवन 3 प्रकार के हैं, निवास गृह, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार। यहाँ के छोटे मकानों में 2 कमरे होते थे जबकि बड़े मकान महलों के आकार के होते थे। मकानों के दरवाजे गलियों की ओर होते थे। मुख्य सड़क के कोलाहल एवं प्रदूषण से बचने के लिए शायद दरवाजे, खिड़कियाँ एवं रोशनदान सड़कों की ओर न होकर पिछवाड़े खुलते थे। प्रत्येक मकान में रसोई घर, आंगन, कुएं, स्नानागार तथा ढकी नालियाँ बनी होती थी। मकानों के दरवाजे संभवतः लकड़ी के बनते थे और मध्य में न होकर अंत में लगाए जाते थे। मकानों की छतें भी लकड़ी की बनाई जाती थी जिन पर चढ़ने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। मकान एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते थे किंतु कभी कभी 2 मकानों के बीच में 1 फुट चौड़ा गलियारा भी छोड़ दिया जाता था। मकानों की नींव पक्की ईंटों से भरी जाती थी जिनके ऊपर सीधी दीवार खड़ी होती थी। दीवारों में हवा तथा प्रकाश के लिए पत्थर की जाली लगाई जाती थी। इससे सूचित होता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति अत्यंत सजग थे। मकानों के फर्श पक्की नहीं थे बल्कि केवल मिट्टी कूट कर उसके ऊपर कच्ची पक्की ईंटें बिछा कर ही बनाई जाती थी। चान्हुदड़ो मोहनजोदड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में एनजी मजुमदार ने की तथा 1935 ईस्वी में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। सबसे निचले स्तर से सैंधव संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यहाँ की मुख्य सड़क 7.5 मीटर चौड़ी थी तथा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति यहाँ भी मकान सड़क के दोनों ओर बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे तथा सभी गलियों में पक्की ईंटों से ढकी नालियाँ बनी थी। मकानों में कमरे, आंगन, स्नान गृह, शौचालय आदि होते थे। स्नान गृह तथा शौचालय की फर्श ईंटों की बनती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज किया है। कुछ बटखरे तथा मुहरें अत्यंत उच्च कोटि की हैं किंतु चान्हुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ ईंटें वक्राकार कर्व्ड हैं। सुतका गेंडोर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित यह सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में स्टाइन ने की थी। 1962 ईस्वी में जॉर्ज ने इसका सर्वेक्षण कर यहाँ के दुर्ग बंदरगाह तथा निचले नगर का पता लगाया। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। इसकी दीवार में बोलता द्वार भी बनाए गए थे। यहाँ की बस्ती के आकार प्रकार से सूचित होता है कि मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन जैसा यहाँ कोई बड़ा नगर नहीं है अपितु इसका महत्व एक बंदरगाह के रूप में था। सिंधु तथा मेसोपोटामिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार को सुगम बनाने तथा उसकी देखरेख करने के उद्देश्य से इस स्थान पर नगर बसाया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मेदभांड, एक ताम्रनिर्मित बणाग्र, ताम्रनिर्मित ब्लेड के टुकड़े, मिट्टी की चूड़ियाँ तथा तिकोने ठीकरे आदि हैं किंतु यहाँ से कोई भी मुहर अथवा अन्य खुदी हुई वस्तु नहीं मिलती। सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित सुतका को स्थल भी है जिसकी खोज 1922 में टेल्स द्वारा की गई है। यहाँ से 2 टीले मिलते हैं। इसका आकार प्रकार भी सुतका गुंडोर जैसा ही था। कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जो सैंधव बर्तनों के समान हैं। बालाकोट कराची से करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित यह स्थल सैंधव काल में एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। 1969 से 1981 के बीच डेल्स ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ से प्राक सैंधव तथा विकसित सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवन कच्ची ईंटों से बनते थे जबकि नालियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। भवनों में कमरे, आंगन, चूल्हे आदि होते थे। भाले, बाणाग्र, तांबे, कांसे, मिट्टी आदि के ठीकरे तथा सैलकड़ी की मुहरें खुदाई में मिली हैं। बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियाँ एवं टुकड़े यहाँ से मिले हैं। संभव है बालाकोट इनके निर्यात का प्रमुख केंद्र रहा हो। अल्लाह दीनों। सिंधु तथा अरब सागर के संगम से करीब 16 किलोमीटर उत्तर तथा कराची से 40 किलोमीटर पूर्व में यह स्थित है। 1982 में फेयर सर्विस ने यहाँ के टीले का उत्खनन करवाया था। यहाँ से व्यवस्थित नगर योजना के साथ साथ बड़ी संख्या में कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवन वर्गाकार अथवा आयताकार है तथा कई खंडों में अविभाजित है तथा कई खंडों में विभाजित है। दीवारों की नींव तथा नालियाँ पत्थर की बनी हैं। कलात्मक अवशेषों में तांबे की वस्तुएं, सोने चांदी के आभूषण, माणिक्य के मनके तथा सैकड़ों प्रकार की मोहरे उल्लेखनीय हैं। मिट्टी की बनी एक खिलौना गाड़ी भी मिलती है। संभवतः यह एक बंदरगाह था। कोट दीजिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस स्थल की खुदाई फजल अहमद खान द्वारा 1955 तथा 1957 में करवाई गई थी। यहाँ प्राक सैंधव तथा सैंधव स्तर मिलते हैं। प्राक सैंधव बस्ती में भी किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। नगर योजना सुव्यवस्थित थी। प्राप्त कलात्मक अवशेषों में विशिष्ट प्रकार के चित्रित मेजबान शादी तथा रंगीन चूड़ियाँ, पत्थर के बाणाकृति कोने, ठीकरे, माता देवी की मूर्तियाँ, पत्थर की चाकी, मन के कांसे की अंगूठियां तथा सेल कड़ी की बनी दो मोहरें महत्वपूर्ण हैं। भांडा जम्मू से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह विकसित हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में जेपी जोशी तथा मधुबाला ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से तीन सांस्कृतिक स्थल प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तरकालीन सैंधव प्रकाश में आए हैं। हड़प्पा कालीन मेदभांड मिलते हैं। मिट्टी के ठीकरे, चर्ट ब्लेड, हड्डी के नुकीले बाणा के कांच से निर्मित पेचदार तथा पिन, एक आधी अधूरी मुहर आदि मांडा के सैंधव स्तर से संबंधित कुछ अन्य अवशेष हैं। हरियाणा बाणावली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस स्थल का उत्खनन 1973 से 74 में RS विस्ट द्वारा करवाया गया। यहाँ से सांस्कृति तीन स्तर प्राक सैंधव, विकसित तथा उत्तर सैंधव प्रकाश में आए हैं। प्राक सैंधव स्तर से भी नगर नियोजन का साक्ष्य मिलता है। ज्ञात होता है कि प्रारंभ से ही यहाँ के निवासी अपने घर सीधी दिशा में बनाते थे। आगे चलकर दुर्ग, प्राचीर एवं निचले नगर की अवधारणा भी विकसित हो गई। इस चरण से एक पत्थर के बाट की खोज भी महत्वपूर्ण है। सैंधवकालीन स्तर की नगर योजना अत्यंत सुनियोजित थी। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए थे। दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई थी। दुर्ग की दीवारें 5.4 मीटर से लेकर 7 मीटर तक चौड़ी थी। यहाँ के भवनों में एक केंद्रीय प्रांगण तथा उसके चारों ओर कई कमरे होते थे। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। कभी कभी भवनों में मिट्टी का लेप लगाया जाता था। एक मकान से 52 पात्र वाश बेसिन लगा हुआ मिलता है। यहाँ से मुहरें तथा बटखरे भी मिले हैं। इससे सूचित होता है कि यह किसी धनी सौदागर का आवास रहा होगा। यह यहाँ एक दूसरे बड़े मकान से सोने, लाजवर्द तथा कार्नेरियन के मनके, छोटे बटखरे तथा एक ऐसी कसौटी मिली है जिस पर विभिन्न रंगों की सोने की परतें चढ़ी हैं। इन सबसे सूचित होता है कि यहाँ किसी जौहरी का आवास था। इस प्रकार जैसा कि मकानों के साज सामान से पता चलता है कि बनावली समृद्ध लोगों का नगर था। बनावली के कई मकानों में अग्निवेदियाँ मिलती हैं। इनके साथ साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे हैं जिसके आधार पर कुछ विद्वान यहाँ मंदिर होने की संभावना व्यक्त करते हैं। यहाँ की मोटी दीवारों के बीच आले ताख बनाए गए हैं। प्रायः सभी मकानों के सामने चबूतरे बने होते थे। खुदाई में प्राप्त अन्य वस्तुओं में मृदभांड, मोहरे, ठप्पे, बटखरे, घुड़ियाँ, चूड़ियाँ आदि सभी हैं। मिट्टी का बना हल तथा कुछ लघु नारी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। जव के दाने काफी मात्रा में पाए गए हैं। रोपड़ पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित यह भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ संस्कृति के 6 चरण मिलते हैं। इनमें प्रथम ही सैंधवकालीन है। यहाँ से इस सभ्यता के लगभग सभी पुरावशेष, मृदभांड, सलखड़ी की मुहर, 3 विभिन्न प्रकार की मुहरों से अंकित ठप्पे, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाणा तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त होते हैं। एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिलते हैं। इसका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा करवाया गया था। यहाँ के प्रमुख अवशेष सफ़ेद काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। यहाँ से ऋग्वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के अन्य उत्खनित स्थल राखीगढ़ी, मिताथल तथा कुणाल है। राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अव्यवस्थित स्थल है। राखीगढ़ी की खोज जिंद के पास सूरज भान ने की थी। यह नगर सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है तथा इसका क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर के लगभग था। स्पष्टतः मोहनजोदड़ो की तुलना में यह 3 गुना अधिक विस्तृत है। यहाँ से तांबे के उपकरण तथा सैंधव लिपि के अंकित एक मुहर मिलती है। मिताथल, जो भिवानी जिले में स्थित है, की खुदाई भी 1859 में सूरज बान द्वारा करवाई गई थी। विकसित हड़प्पा काल में यहाँ दुर्ग तथा आवासीय बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। अन्य अवशेष तांबे की कुल्हाड़ी, पान पात्र, पत्थर के बटखरे, मृतपिंड, मिट्टी एवं सीप की चूड़ियाँ आदि हैं। कुणाल, जो हिसार जिले में है, प्राक सैंधव कालीन स्थल है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्रकाश में आए हैं। जो अगला है वह कालीबंगा है। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 1961 में बीबी लाल तथा बीबी के थापर के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से भी 2 टीले मिलते हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा सा तथा पूर्व की ओर का बड़ा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम नाम दिया गया है। इसके निचले स्तरों से प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस टीले की बस्ती भी सुरक्षा भित्ति से घिरी हुई थी। इसके निर्माण में 30x30x10 सेमी की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। यह मूलतः 1.90 मीटर चौड़ी थी, जिसे बाद में दुगुना कर दिया गया। प्राक सैंधव काल में प्रमुख अवशेष में लाल अथवा गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृदभांड, साधारण तस्तरिया, पेंदीदार और सकरे मुंह के घड़े, छोटे बड़े आकार के मटके आदि हैं। कुछ बर्तनों पर काले रंग में ज्यामितीय अभिप्राय चिंतित हैं। गोमेज, चार सीढ़ी तथा कार्निलियन से बड़े पाषाण उपकरण, ताम्र में निर्मित कुल्हाड़ी तथा परस जलखड़ी, शंख, कार्निलियन एवं तांबे के मनके, पकी मिट्टी और तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की खिलौना, गाड़ी के पहिए आदि इस स्तर से मिलते हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इसमें आड़े तिरछी जुताई की गई है। एक ओर हराइयाँ पूर्व पश्चिम में तथा दूसरी ओर उत्तर दक्षिण में बनाई गई हैं। पहली की दूरी 30 सेमी तथा दूसरी की 190 सेमी है। दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जालीदार जुताई का नमूना प्रस्तुत करती हैं। कम दूरी की हराइयों में चना तथा ज़्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता था। चूँकि जुताई की यह विधि आज भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, अतः अनुमान किया जा सकता है कि विकसित हड़प्पा काल में भी यह विधि रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलनाकार तंदूर है। इसके नीचे पुताई की गई है, जो बिल्कुल आज के तंदूरों जैसी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगन के भवन कच्ची ईंटों के बने हैं, जो सामान्यतः 30x15x7.15 सेंटीमीटर आकार की है। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से सार्वजनिक नाली के अवशेष भी नहीं मिलते। मकानों की नालियों का पानी नाबदानों में गिरता था। लकड़ी कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगन में ही मिलता है। कालीबंगन की एक फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। फर्श की ईंटों पर वृत्त को काटते हुए वृत्त का सुंदर अलंकरण किया गया है। संकलिया का विचार है कि इस प्रकार के अलंकरण का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। कालीबंगन के प्राक सैंधव स्थल की खुदाई से 5 निर्माण स्तरों की जानकारी मिलती है। इस काल के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। सामान्य मकान में 4-5 कमरे, आंगन, बरामदा तथा चूल्हे होते थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कालीबंगन प्रथम की बस्ती का भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ईसा पूर्व 2700 से 2600 के लगभग अंत हो गया। तत्पश्चात कुछ समय तक यह स्थान वीरान रहा। जब सैंधव सभ्यता के लोग पुनः यहाँ बसे तो उन्होंने मिट्टी तथा कच्ची ईंटों के चबूतरे पर अपने मकान खड़े किए और आवास क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया। हड़प्पा कालीन कालीबंगन की नगर योजना भी अन्य नगरों के ही समान थी। यहाँ भी हमें दुर्ग तथा निचला नगर के रूप में नगर का विभाजन मिलता है। दुर्ग प्राक सैंधव स्थल के ऊपर से ही बसाया गया था। दुर्ग को बीच से एक लंबी दीवार द्वारा, जो पूर्व पश्चिम में जाती थी, दो भागों में विभाजित किया गया था। ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल में नहीं मिलता। दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा भित्ति बनाई गई थी तथा स्थान स्थान पर उसमें बुर्ज बनाए गए थे। बुर्ज तथा सुरक्षा भित्ति दोनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर कुआं, अग्निकुंड तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त जिसमें पशुओं की हड्डियां थी, तथा दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी हुई थी। दुर्ग के इस दक्षिणी अर्ध भाग पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। स्पष्टतः इस दुर्ग का कोई धार्मिक प्रयोजन था। संभव है यहाँ पशु बलि दी जाती रही हो। उत्तरी अर्धभाग में कुलीन लोगों का आवास बना था। कालीबंगन का निचला स्तर भी सुरक्षा भित्ति से घिरा हुआ था। दुर्ग के एक भाग में भवनों के नौ क्रमिक स्तरों का पता चलता है। भवनों के आगे और पीछे दोनों ओर सड़कें बनी थी। सड़कों को पक्की बनाने का प्रयास केवल यहीं मिलता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ भी भवनों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। दरवाजे में शायद एक ही पल्ला लगाया जाता था क्योंकि इसके लिए केवल एक ही छेद पाया गया है। भवन कच्ची ईंटों के बने हैं। लकड़ी के तनों को खोखला कर नालियों के रूप में प्रयोग किए जाने का साक्ष्य केवल यहीं से मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि कालीबंगन में सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। सैलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मेदवान के टुकड़े मिलते हैं। कुछ लेख युक्त हैं तथा इनके अक्षर हड़प्पा लिपि के समान हैं। लेख युक्त बर्तन के टुकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा लिपि दाई से बाई ओर को लिखी जाती थी। आवास क्षेत्र के दक्षिणी भाग से कब्रिस्तान मिला है जिसमें समाधान के कुछ नई विधियों पर प्रकाश पड़ता है। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं।